निश्चित रूप में परमात्मा ही है, जो किसी से आपका संपर्क नहीं है, सब जगह रहते हैं किसी में नहीं है, सबको प्यार करते किसी को प्यार नहीं करते, न भूतेषु न, मैंने मैं भूतों में प्राणियों में नहीं हूं और सब में हूं, मतलब क्या, किसी से भी कोई स्नेह का प्रीति का गंध नहीं है, गोपिया का भी है नखल गोपिका नंदनो कुमार, आप यशोदा के पुत्र न नहीं है निश्चित रूप में खत ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा, नहीं तो जरूर आपका चित्त दरित हो जाता, तभी हमको छोड़ करके
नहीं जाता,
नहीं जाता। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी, आप जरूर यशोदा के हैं, किंतु आपकी ऐसी ये कहां से आ गई, आपको लज्जा नहीं चाहिए यशोदा का पुत्र होते हुए भी आपका हृदय इतना कठोर हो, काली गोपी बोली कोई कार्य नहीं, नकल गोपी का आनंद अनुभवा अखिल देही नाम अंतर, आप निश्चित रूप में अंतरात्म जो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले आप जरूर हैं, इसलिए आपको दया इत्यादि कुछ भी नहीं है, हृदय आपका पूर्ण कठोर है, क्योंकि परमात्मा है ना, साक्षी है, साक्षी क्या करता है, एक आदमी को मर्डर कर दो और वो देखता है, उसका कुछ नहीं बिगड़े, जब साथ सुन रहा है कि इसने हमारी मैया को, इसकी मैया को काट दिया, और ये साक्षी है वो कथित प्रज्वलित नहीं मार रोएगा नहीं, और ये साक्षी है जो इसने मारा, ये साक्षी को नहीं तो कपड़े संतुष्ट साक्षी चाहिए ना, वो ये उसका हृदय द्रवित न गया, इसकी मैया मर गई है इसने, और जानता है जिसे यही मारा है ठीक, किंतु बिना साक्षी के कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ये हमारे हृदय में साक्षियां रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कष्ट से पीस रहे हैं हम लोग, और वो देख रहा है क्या करेगा, उसमें यदि हमने कोई बदमाशी की तो क्या करेगा, भरपूर दंड दे, उसको दया नहीं आएगा, ऐसा कहते हैं, इसलिए सब अंतरात्मदृष्ट सबके अंदर निवास करने वाले किंतु किसी से कोई मतलब नहीं रखने वाले आप साक्षी के स्वरूप ही हैं, आपको तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की देवताओं के लिए, इसलिए आप आए हैं, इसलिए आपको दया और इस सबसे क्या संबंध है, इस तरह से जैसे जिसकी भावना है उसका इतना हो जाए, तो इसलिए नाम, नाम कैसा होना चाहिए, अहतम यशोदा नंदन नंद सिंधु कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावन प्रणत करो कृष्णादित्यनेक स्वरूपे कई मम ऋतु ऐसा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी नाम लिए हैं कृष्ण के न, राधिका जी के नाम भी कृष्ण के, उसमें इतना सुंदर उन्होंने व्यक्त किया है जो और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता, कितने सुंदर सुंदर उनके नाम 100 उनका नाम 108 उनका श्रवण करने से ही कल्याण होगा, किंतु होगा किसका जो इसमें थोड़ा सा रुचि, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत आराधा कांत नमस्ते, इसमें राधा कांत को हटा करके सब बोलो, राधा कांत को हटा दो एक शब्द को और फिर उसको प्रणाम करो, तो जो वैष्णव जो रसिक वैष्णव उनको इस नाम में रुचि ही नहीं है, वो होने से राधा कांत को हटा करके बोलो और राधाकांत कहो तो उसमें सब कुछ आ गया और कोई कुछ बाकी नहीं रहा, इसलिए नाम में भी वैसा नाम होना चाहिए, समस्त नामों में कहते हैं कृष्ण नाम है समस्त नामों का सार है, वो दूध औटा हुआ सार है, राधे की नाम सुंदर सिद्ध वो एकदम दूध है, आप उसमें कर्पूर लगा दिया, एकदम सुंदर सुगंध युक्त मधुर दूध हो गया। पाकने पर उसमें चीनी चीनी देने की जरूरत नहीं होती, उसमें अपने आप मिठास आ जाता है, बड़ा सुगंध, और उसमें कर्पूर दे दिया, इसको कहते हैं पू, पू किसको कहते हैं, कोई चीज बना रहे हैं अपना करके उसमें वो पूर लगा दिया, पूर किस चीज का लगाया, खीर का, खीर का पूर लगा दिया। ऐसे ही नामों में सब नाम ही श्रेष्ठ हैं, किंतु गौण मुख्य हैं, गौण मुख्य में भी मुख्य नाम है और उसमें भी सबसे मुख्य मुख्यतम मधुर नाम है, राधा संबंधी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ये ठीक नाम है, किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ये सखा भी हो सकते हैं, ब्रजेंद्र नंदन यशोदा जी बड़े प्रेम से करिए ब्रजेंद्र नंदन, ये भी ठीक, किंतु स्पेशल जो नाम है वो गोपियों के द्वारा संबंधित वो नाम सबसे श्रेष्ठ है, इन नामों के प्रति यदि किसी की रुचि हो वो सबसे उस नाम के द्वारा वो प्रेत प्रेम मिलेगा।
सैम नाम सैम सुंदर नाम
है, इसलिए सनातन गोस्वामी ने बृहद भगवत अमृत में रसायन में इन सब का वर्णन किया, साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण, भागवत श्रवण में भी बहुत प्रकार है, एक स्कंध सुन रहा है, कोई द्वितीय कोई तृतीय सृष्टि खंड इत्यादि सुन रहे हैं, नौ स्कंध तक जितनी भी लीलाएं हैं वो सबका सुन रहे हैं, दसवें स्कंध में बाल्य लीलाएं को पौवन लीलाएं सुन रहे हैं और इसके बाद में द्वारका इत्यादि की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, एकादश स्कंध में उसका सार जो तत्व सिद्धांत है और कैसे इसमें प्रवेश कर सकते हैं इसका वर्णन है, और दशम के कुछ जो गीतियां हैं भ्रमर गीत गोपी गीत
वेणुगीत
वेणुगीत
गुणगीत
प्रणयगीत ये सब जो हैं ये श्रीमद्भागवतम मूल सार उसका मंथन करके सार जो निकाल लिया। तो भागवत शरण माने वो समान जिसका जैसा अधिकार है उसके अनुसार भागवत शरण मथुरादास, मथुरादास को किस लिए यहां पर कहा, इसलिए कहा वैकुंठा प्रतिशोधरात्मक विकास आरती जातिया जत्र शीर्षक निंद पट्ट महिष वृंद खेल प्रेम क्षेत्र अपनी असौ तथो श्रेष्ठा मथुरा हरे जन्म पर जत्र श्री ब्रज एव राजित तरण
स्वामी,
जिस मथुरा में ब्रज सारा उसी में निवास करता है, इसलिए द्वारका इत्यादि से भी श्रेष्ठ वैकुंठपुरियों से भी श्रेष्ठ ये मथुरा, और मथुरा चूंकि मंडल में पहले मथुरा मंडल ही कहा जाता था अब इसको ब्रज मंडल कहने लगे, तो मथुरा मंडल में ही ये सब ब्रज की जितने भी स्थान है राधाकुंड श्यामकुंड गोलराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना सब इसी के अंतर्गत है, इसीलिए प्रेम की प्राप्ति का मथुरा द्वारा ये पद्म पुराण इत्यादि शास्त्रों में भी इसको ऐसा बतलाया गया, रूप गोस्वामी ने भी कहा है मथुरा देवी जी आ रही हैं, अरे क्या कर रहे हो आप उनकी उनकी जूती को सामने लाना, अरे उनकी पिछदानी नहीं आए किसको शास्त्रियों को अपेक्ष को बुला, अरे उनकी पिछदानी को लाना तो जल्दी से, और जो क्या तुम डरो मत डरने की जरूरत नहीं है, मथुरा देवी आ रही द्वारका जल्दी से आ जाना, उनके लिए अभिनंदन की चीजों को फूल की माला इत्यादि सुसज्जित करके रखते, अतः मथुरा पुरी को हम सबसे उनका तात्पर्य यहां पर ब्रजमंडल से यहां पर उनकी रश्मय लीलाएं होती हैं, मथुरा मथुराबाद श्री मुक्ति सब खाए श्री विग्रह का सेवा करने से ही श्री विग्रह का सेवा मैंने सब गीताकार हो गया है, सब देवता देवियों की सेवा है उससे तात्पर्य, द्वारकाधीश की सेवा इसे भी तात्पर्य, रघुनाथ दास गोस्वामी की किससे जरूरत है? राधा और कृष्ण से। इसलिए महाप्रभु जी ने उनको कृष्ण के रूप में गिरिराज जी को और राधिका के रूप में
इंद्रा मां
को उनको प्रदान कर दिया और उसी को अपना समझ। रघुनाथ रूप गोस्वामी गोविंद जी की सेवा, सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की, राधा मदन मोहन की सेवा
प्रकाश
की, और मधुपंडित जी ने
गोपीनाथ
जी का, गोपाल भट्ट सिंह जी ने राधा रमन जी की सेवा की, जीव गोस्वामी ने जीव गोस्वामी ने नहीं दिया, रूप गोस्वामी ने प्रकाश करके उनको दे दिया। इस तरह से श्री विग्रह सेवा, विग्रह सेवा भी दो प्रकार का, एक होता है अर्चनात्मक स्थूल अर्चना और दूसरा होता है भावमयी सेवा भावात्मक। हमारे गोस्वामी की जितनी सेवाएं हैं ये सब भावात्मक है, होने से भी भावात्मक, इसलिए किसी सेवा को ही अर्चन करना है किंतु उसमें भावात्मक। तो इस प्रकार से ये पांच श्रेष्ठ हैं। तो पांच में ही आया ना शिव मथुरावास, उसमें ब्रजवास किया। हमारे वेद भगवतामृत में बतलाया गया, नारद जी ने प्रार्थना की ये आपने जिस लीला को प्रकाश किया और गोपियों की महत्ता जो आपने बतलाई और गोपियों का हमारे प्रति जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम, या प्रेम जीवों को कैसे मिले, इसके लिए वो प्रार्थना करके वर मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इन लीलाओं का जो कोई थोड़ा सा भी श्रवण करेगा श्रद्धापूर्वक, और जहां हमारी लीला भूमि है उसमें प्रार्थना करेगा, लोट पोट करेगा, प्रार्थना करेगा गिर करके लोट पोट करके, तो उसको सहज ही वो चीज की जो देवताओं के लिए भी परम योग्य है, भगवान आयो मस्तु ऐसा ही हो। इसलिए ये जो कह रहे हैं जिसे संवाद का प्रजित हुआ ये वो प्रतिभा जन्म जन्म में ही हमारा यहां पर निवास हो और इसको छोड़कर के कहीं एक सेकंड के लिए नहीं जाए, इसीलिए उन लीलाओं का वहां पर स्मरण होता है जो उनके लिए आराध है। इसलिए वृंदावन वास, ब्रजवास, नवदीप वास ये साधारण है। ये ब्रह्मांड पुराण में ऐसा कहा गया है, परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्र तप, स्पर्श मात्रता स्पर्श मात्र से ही परमानंदमयी सिद्धि को प्रदान करती है मथुरा देवी। तो स्पर्श मन यहां से राधा कुंड के स्पर्श से ही स्नान से ही हो जाएगा। तो लाखों लोग तो करते हैं स्नान, क्यों नहीं होता? स्पर्श होना चाहिए ना, तो स्पर्श होना चाहिए। हम लोग का तो ऐसे मालूम होता है कि स्पर्श नहीं हो रहा है, इधर राधा कुंड में स्नान करने से भी हमारा स्नान हुआ कि नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं, जिसका हुआ उसका हुआ, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ, तब उसका फल एक जरूर हुआ। निष्फल नहीं होगा स्नान, जैसे स्थूल रूप में भी स्नान करते हैं हम, गोबात गिरिराज और बर्धन परिक्रमा देते हैं, निष्फल नहीं जाएगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। तो जिसका जैसा पात्र है उसके अनुसार, कोई अपनी संसारिक कामना वासना करेंगे, पारमार्थिक पर ये करेंगे, उनको सहज ही देंगे, ये गोपी प्रेम सहज ही नहीं देंगे, जिसके लिए रघुनाथ दास को स्वामी जी प्रार्थना, इनको क्या जरूरत है? इसलिए कहते हैं ये राधा कुंड में बैठी राधा जी की मैं काशी की नहीं करेंगे और कुछ नहीं मिल जाती, इसलिए इसको और कौन देगा? राधा कुंड दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए परमानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्र पर अंत तो श्रद्धापूर्वक मथुरा में वास है, अपराध न होने पाए। जब और जगहों में जो अपराध होता है उसका उपाय है उद्धार होने का, किंतु मथुरा में प्रवेश लग जाता है वो साझी नहीं जाए। यहां प्रकार के फैसलों से मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे, नाम के विद्याचरण करेंगे, भगवान का विरोध करेंगे, शास्त्रों का विरोध करेंगे, ये ऐसा प्रज्वलित हो जाएगा जो उत्साही नहीं जाए। बहुत सावधानी के साथ में धाम में बात करना साथ ठीक भी है, और कुछ हालत में अयोग्य व्यक्तियों के लिए ये भारी भी पड़ जाता है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि अनाधिकारी व्यक्ति वृंदावन में जाते ना, आज यदि जाते ताले ना रख दे थे, उनको बुद्धि कर करके इसके प्रति श्रद्धा है, और जिनको कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो गई है इनकी सर्वास है। स्पर्श मैंने जैसे ही किया हाथ से, किसका स्पर्श किया, किसका स्पर्श किया, तो यहां पर स्पर्श का तात्पर्य है भावों के साथ में स्पर्श, शरीर से ही स्पर्श करने से नहीं, कभी वो भी दिखा नहीं जाएगा, वो कब देगा कुछ न कुछ जरूर, किंतु अपनी वासना के अनुसार। अभी हमारे नाम कर रहे हैं और करेंगे से भाई बहुत तंगी आ गई है, कुछ पैसा हरे कृष्ण अमन कर रहे, पैसा पैसा आ रहा, बुरा तो नहीं है, अब क्या करेगा, वो तो आ रही है चिंता, जरूरत है बहुत, लड़की की शादी है, अभी हमको 1,00,000 रुपया चाहिए और है नहीं, दिमाग चंचल हो रहा है, तो नाम तो छोड़ेगा नहीं, नाम तो करेगा, किंतु होगा क्या है जो वो चिंता होने की वजह से वो काम जरूर होगा। ये अनुभूति के साथ में ये सब अनुभूतियां हैं, इसलिए कहते हैं जो मथुरापुरी परानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्र, तो मथुरा में जो कहते हैं ये उनकी एक रात्रि निवास है ना,
निवास है ना, हरो भक्ति प्रजा
भगवान की भक्ति हो जाती है, तो कैसे अभिलाषा करेगा तब तो ये कहता है जो करवट बदलने के लिए हम यहां आए हैं, करवट बदलना मैंने क्या है, मैंने मरने के लिए आए हैं, ये गति हो जाए तो उनको करवट बदल लेंगे पर हो जाएगा, मैंने मर जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, करवट बदलने का मन नहीं, तो मथुरा में रह करके यदि मर गए तो बिना साधन भजन के ही मुक्ति हो जाएगी, किंतु कृष्ण प्रेम बिना साधन के नहीं होगा भाई, मथुरापुरी में रह करके भावना करनी पड़ेगी। और यहां पर बोलते हैं कि परमानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्र, अर्थात मथुरा के स्पर्श, मथुरा के भाव को स्पर्श करते ही धाम के साथ में स्पर्श करने पर जो साधन कर रहा है वो साधन यदि करता रहे अनुराग में से तो बहुत जल्दी से हो जाएगी इसका ये काम, जैसे श्रीमद भागवत के कृति या दूसरे श्लोक धर्मा को अत्र परमो विमर्शनाम सतान वैद्यम वास्तव अत्र वस्तु श्रीमदम तात्र अनुलंगनम
श्रीमद्भागवते
महामुनि कृते किं वा परमेश्वर हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः सुश्री तत्क्षणात् भगवान उसके हृदय में आबद्ध हो जाते हैं। तत्क्षणात् माने क्या, तत्क्षणात् माने तो होता है ये उसी समय तत्क्षणात् सुनने से ही, किंतु उसमें लगा दिया, किंतु सुश्रुभि कृति, कृतिभि माने साधन, कृतिभि और सुश्रुभि माने सत्ता पूर्वक उसको श्रवण करने वाले, तत्क्षणात् का तात्पर्य वहां से आरंभ हो गया काम। जैसे गैसलाइन हमने जलाई, एक प्रदीप को जला रहे तो जलाने के साथ ही साथ तो प्रदीप जलेगा, ऐसा ही तो नियम है तत्क्षणात्, किंतु हुआ क्या, जब वो छन 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 कर रहा है कुछ पानी का अंश था या कुछ तेल में गड़बड़ी थी, अब वो उसके ऊपर जम गया है इसलिए जला रहे हैं तो कुछ विलंब हो रहा है किंतु जलेगा, ऐसे ही तत्क्षणात्। यदि हमारा 10-20 जन्मों के अंदर में भी भगवान के प्रति भक्ति होती है तो उसको तत्क्षणात् समझो, उसको विलंब मत समझो, बहुत जल्दी हो गई, एक जन्म की बात है। हम सुनते हैं कि गोपी भाव के लिए कितना ब्रह्मा कितने चले गए, एक तो ब्रह्मा नहीं कितने ब्रह्मा चले गए और उनका साधन उन्होंने कहा कि आज हमारा परम सौभाग्य है कि इतना जल्दी भगवान को श्रुतियां जनकपुर की महिलाएं द्रौपदी अद्रौपदी कितना उन्होंने साधन भजन किया कभी नहीं हुआ। मुक्ति तो बहुत भगवान का एक नाम कर दिया और बस नाम स्पर्श जीवा के साथ में मुक्ति हो गई। ये समझ लो कि तुम लोग की मुक्ति हो गई है, ये समझ लो भगवान का कितना नाम तुम लोग कर रहे हो उसे तो हो जाए किंतु प्रेम होना बड़ा है। अभी मालूम नहीं हो रहा कि हम मुक्त हुए किंतु जब देखेंगे इसे ये हम जब हमारी मृत्यु हो गई उसके बाद में देखेंगे ये भाव आप मिल जाए और यदि भगवान के विशेष अनुग्रह तो फिर जन्म दे करके उसमें कुछ प्रारब्ध कर्म लगा करके भजन साधन के लिए सुख दुख दे करके भजन के लिए वो कर्मों का फल नहीं है। इसलिए मंदिर मंदिरों में जाकर के दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन भी सुन रहे हैं कर रहे हैं, निष्ठा किसी एक वस्तु में कृष्ण में नहीं, और कृष्ण में निष्ठा होने पर भी एक भाव में नहीं हुआ, अभी कोई भाव ही नहीं हुआ पातों में, तो अभी सिद्धि में अभी कहते हैं बृहद भागवतामृत का श्लोक देकर के बतलाए तब तू लौकिक सदबंधु बुद्ध्या प्रेम भयादिजम विघ्न निरस्य तद गोप गोपी दास्य इप्स्या अर्जये तब भी तब तद ब्रज क्रीड़ा ध्यान ज्ञान प्रधान भक्त्या संपद्यते प्रेम प्रेष्ट नाम संकीर्तनो हुआ। हमारे सनातन गोस्वामी ने अपना स्वामी अपना सर्वश्रेष्ठ ये सब कोई को ध्यान को बतला रहे हैं श्रेष्ठ स्मरण को, हाँ स्मरण तो है किंतु नाम संकीर्तन के अधीन होकर के होगा कलयुग में
कीर्तन प्रभावे
स्वतंत्र प्रभाव उसका नहीं रहेगा कीर्तन प्रभावे श्री कांडे इसलिए नाम संकीर्तन के माध्यम से ही पौ स्तुति कीर्तन कर रहे हैं और उनके माध्यम से कृष्ण लीला का स्मरण होता जा रहा है। भजा निराधम अरविंद नेत्र स्मरा निराधम मधुर स्मिताभ्याम बदा निराधम करुणाभ्राभ्याम तथो मम नास्ति गतिर्ज्ञा हमारी और कोई गति नहीं तवई वास्मि वही वास्मी नया इति विज्ञा है आदे इस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए कहा तब तू लौकिक सदबंधुवत कृष्ण के प्रति लौकिक सदबंधु का भाव सदबंधु माने लौकिक लौकिक नहीं किंतु लौकिक
लौकिक
बहुत बड़ा लौकिक वक्त लौकिक सदबंधु बुद्ध्या उनको अपने बंधु समझो अपने प्राण का बंधु सखा मित्र पिता या प्रियत सदबंधु होना चाहिए। लौकिक भाव अलौकिक भाव होने से ऐश्वर्य जा जाएगा इसलिए ब्रज का भाव से सिद्धि नहीं इसलिए लौकिक बंधु सखा एकदम प्राण बंधु पुत्र और पिता का संबंध भी तो वैसा ही लौकिक पुत्र किंतु ये मत समझो जो कृष्ण में कभी भी भगवत्ता का अभाव होता है कभी भी अभाव हो नहीं सकता। इसलिए ऐश्वर्य जाने पर अकक्ष ऐश्वर्य के प्रकट रहने पर या न प्रकट रहने पर भी नरवत लीला के भाव के अनुसार में कृष्ण में सदबंधु भाव होना चाहिए किंतु होना बड़ा कहीं कठिन है होने पर भी भक्तों के संग से ये सहज और संभव है यदि किसी का ऐसा स्वभाव सौभाग्य हो गया तो प्रेम भयादिजम भय इत्यादि दूर रहे कृष्ण से ये भगवान है ऐसा भावना है लौकिक सदबंध हुआ गोपियों का भी ऐसा है गिरिराज गोवर्धन धारण कर रहे हैं गोपियों का आश्चर्य नहीं हुआ क्यों नहीं आश्चर्य हुआ हमको आश्चर्य होता है बड़े बड़े देवताओं को ब्रह्मा को सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको इसलिए नहीं हुआ, अरे नंद बाबा के गोवर्धन की पूजा ग्रहण करके ऐसे दयालु हो गए अपने आप उठ करके चले। उनको ये नहीं कहा कि कृष्ण के प्रताप से ये उठ करके उनके और कृष्ण के बल से उनके अंगी पति गए, कृष्ण ने नहीं किया। और सखा लोग कह रहे हैं कि हमारे लक्ष्या के वजह से ये स्वीकार हुआ। और गोपियां क्या आता रही है, हमारी आंखों के इशारे पर ये यदि गिर जाएंगे तो हम जला करके इनको भस्म कर देंगे। अब तुम कैसे धारण करो, तुम्हारे बाएं में कौन है? इसलिए राधिका जी ये धारण कर रही है, तुम नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं। तुम्हारी शक्ति है ठीक है, तो तुम्हारी शक्ति क्या है? राधा जी, इसलिए राधा जी गोवर्धन को धारण कर, इसमें तुम्हारा कोई भी महत्व नहीं है। और इस तरह से लौकिक सब बंधु भाव विघ्नम निरस्य तब गोप गोपी दास्य इच्छा अर्जय। इच्छा मैंने कामना, मैं गोप और गोपियों का दास दासी होना चाहता हूं, होना चाहती हूं, ऐसी भावना लेकर के कृष्ण के प्रति सद्बंधु हो। और जहां जहां पर उन्होंने ऐसी सब विधायक की हैं उन स्थलों में जाकर के उनसे प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, उनसे प्रार्थना करना, जैसे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं वैसे ही उनको कृष्ण ही समझे, कम नहीं। वो कौन है? बलदेव प्रभु जी खुद है। इसलिए उनसे चरणों में प्रार्थना करने से ये कठिन काम भी सहजी तद्वै तस्य प्रिय पीड़ा बनभुमौ सदा रहा। इसलिए कृष्ण की क्रीड़ास्थलियों में सब समय निवास करे, कान निर्जन जो बन जैसा भी दीप पड़ता वहां पर रहे। जैसे कि रूप गोस्वामी कहा आते थे नंदगांव में उस समय भयानक जंगल, अभी भी वहां पर रात में कोई रह नहीं सकता, बड़ा भयानक डकैत लोग वहां पर आते हैं।
बड़ा
यदि चश्मा खड़ी देखा तो हो गया बस खत्म। संवासन तम याद एवं संपद्यते अचिराध्वम नित्य ध्वन मैने निश्चित रूप में अचिराद मैने वह भाव की सिद्धि हो जाएगी। इसी तरह से उन्होंने वर्णन किया जो धाम के प्रति निष्ठा और धाम में निवास करके और वैष्णव के अनुगत्य में यदि उस प्रकार का भजन किया जाए तो सहज ही
पावनेभ्यो वैश्विभ्यो रवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदा
रघुनाथ दास गोस्वामी के दस नियमों को बतला रहे थे। कैसे भजन करना चाहिए। साधारण रूप में लोग अशांत चित्त से सिद्धि स्थिर नहीं कर और मनमानी तरीके से भजन करते हैं, और कुछ लोग जैसा गुरु वैष्णव लोग बतलाते हैं वैसा भजन करते हैं। भजन करने के लिए कुछ निश्चित नियम है, उन नियमों को पालन करना चाहिए, चाहे वैदिक भक्ति हो चाहे राजा हो। कल हमने बतलाया था ब्रज में ही हम रहेंगे, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी है, अनंत गांव है, बरसाना है, या और ब्रज के स्थान है यहां पर फिर कृष्ण की लीला संज्ञा विशेष विशेष करके उनकी लीला की जगहें हैं, वहीं बात करके एक मिनट भी हम ब्रज से बाहर नहीं जाए जैसे उन्होंने किया। एक त्रुटि काल निमेश काल भी हम ब्रज से बाहर नहीं जाए, जैसे हरिभजन करेंगे इसका संकल्प है, वैसे धाम बात का भी संकल्प है। यदि मैंने सुना ये कृष्ण द्वारका गए हैं और उन्होंने उद्धव जी को भेजा दे जाओ उसको बुला लाओ मेरे पास में, मैं उसके लिए बहुत सरक रहा हूं, जाओ तो ले करके साथ में आना, और उद्धव जी आए और समझाया भी जाए तो जाना चाहिए कि नहीं? भगवान बुला रहे हैं और उद्धव जी आए हैं बुलाने के लिए, फिर तो जाना ही उचित है। पर हाँ, जाना उचित है और सब लोगों को जाना भी चाहिए, किंतु मैं नहीं जाऊंगा। सब लोग जाएं और जाना उचित है, जब उद्धव आए हैं कृष्ण भी बुलाए तो जरूर जाओ, तुम लोगों को जाना चाहिए, किंतु मैं नहीं जा रहा किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर हम नहीं जा सकते हैं, ये कल हमने बतलाया। इसके लिए एक छोटी सी कथा है, यहीं पर कोई गांव है, गांव का नाम याद नहीं, उनका कोई एक महात्मा जी थे, उनका भी उत्सव होता है, वही गांव में रह करके बरसाना और गोवर्धन के रास्ते में कहीं वो गांव है,
सुनेरा कदमखंड के पास,
वो लोग सब जानती हैं कौन सा गांव, धनबाड़ी वो स्थान है। तो वो राधाकुंड के एक बाबा जी थे, उनसे उनकी बड़ी सख्त भाव था और दोनों भावाविष्ट होकर के भजन करते थे, अष्टकाली लीला का चिंतन भी करते थे। लीला दो तरह से स्मरण होता है, एक तो अपनी चेष्टा से एक करते हैं भजन, अपनी चेष्टा से कुछ लोग करते हैं, और कुछ होता है अपने आप होने लगता है। नाम हम अभी अपनी जीवा से कहते हैं अब हरिनाम करना चाहिए था, और एक अवस्था ऐसी है जो अपने आप तुम्हारी इच्छा नहीं रहने पर भी अपने आप नाम जीवा पर होने लगता है, दूसरा वाला शेष है। ऐसे ही हम भजन करते हैं या अपनी चेष्टा से, और एक होता है अपने आप वो लीला या वो भजन अपने आप हृदय में उदित हो जाता है, उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, किंतु वो होगा अनर्थ निवृत्ति के पश्चात और किसी भक्त की या भगवान की विशेष कृपा हो तो हो। आसक्ति में भी जरा मुश्किल है, तो वो ये होगा जब विशुद्ध सत्वित होगा तब आसक्ति में भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आभास होगा। तो ये लोग भजन करते 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 अत्यंत परिपक्व होने जा रहे, तथा उनकी इच्छा हुई रणबाड़ी को बाबा जी को, उम्र भी उनकी बहुत काफी हो गई थी, वृद्ध जरत हो गए थे। इच्छाओ जी द्वारका एक बार उन्होंने दिया नहीं, कभी जाकर के देखा, फिर कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, द्वारका में नहीं। किंतु थोड़ी सी इच्छा होते ही यदि भक्तों के हृदय में थोड़ी सी इच्छा, नाम करते करते भगवान का भजन करते करते, तो भगवान उस इच्छा को जरूर पूरा करा देते हैं। ध्रुव जी ने चाहा मैं पृथ्वी का राजा बन जाऊं, और जब भगवान ने दर्शन किया तो उनकी दर्शन की लालसा से मिट तो गई वो आशा जी, अब नहीं। किंतु भगवान ने पहले की जो आशा थी उसको पूरा करने के लिए कहा कि 36,000 वर्ष तक राज्य हो। अब तो रोने लगे, कहा नहीं अब ऐसा, अब तो भोग करके ही आए। 36,000 वर्ष ऐसे ही चला गया। इसलिए भजन करने के समय में यदि कोई थोड़ी सी भी कामना हृदय में उठती है तो प्रभु उस कामना को पूरा करा करके तब फिर आगे बढ़ा दे। इसलिए खबरदार, यदि कोई कामना हो गई उसकी छाप मोहर लग जाएगी मन पर, और प्रभु उसको पूरा कराने में कितना दिन लग जाएगा कोई ठीक नहीं, कितने जन व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए अन्न अभिलाष सबको दूर रखो, कोई आसान न रहे। ये थोड़ी सी बात लगती है, मैं द्वारका में जाऊंगा जरा दुर्ग, कौन नहीं करता है, सभी लोग इच्छा करते हैं जाने के लिए, इच्छा दूसरों के लिए क्षम्य था, इनके इनके लिए क्षम्य नहीं है। क्यों? अब समझ गए हैं, बुझ गए हैं, उपदेश पाए हैं, एक रास्ता इनको मिला है और काफी आगे चले गए, और वहां जाकर के ऐसी इच्छा करना ये ब्रजभाव के विपरीत है। द्वारका का ध्यान, रुक्मिणी का ध्यान, उनकी पूजा और इनके अंदर में आ गई, और उनकी चित्त वृत्ति पर मोहर पड़ गई, छाप पड़ गई। भगवान ने देखा कि इसने सब गड़बड़ कर दी, इसलिए उन्होंने साथ ही साथ में व्यवस्था की है, जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था पूरी कराकर फिर उसका भोग भी करा दें, नहीं तो इसमें जन्म जन्मांतर चले जाएंगे। जैसे शंकर जी का हुआ था ना, शंकर जी ने अपने कालभूषण जी को अभी संपात दिया था, लाख जन्म तुम नरक में जाएगा, तो उनके गुरु जी रोने की वजह से 7-7 जन्म और मरण होते 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 थे, थोड़े देर में ही उनको भुगा दिया, भोगना पड़ेगा फिर। तो उन्होंने भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था की, एक ब्राह्मण को उनके पास में भेज दिया, मैं जा रहा हूं द्वारका, हमारे साथ चलोगे बाबा जी, घुमा लाएंगे। नहीं भाई, मेरी जाने की इच्छा तो थी किंतु अब नहीं जाए, अब नहीं जाए, और हमारे पास में क्या है, जो मैं जाऊंगा काफी रुपया खर्चा है, उन्हें खर्चा टर्चा हम करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, आपको पकड़ करके ले चलेंगे और सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे, बस आप हमारे साथ में चल चलें, फिर आप ये बूढ़ा हो कभी समय मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए चलिए। तो उनके कहने से उन्होंने सोचा कि हमारी इच्छा तो हो गई थी, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई जाने की, अब जाने की इच्छा नहीं, तो वो माने नहीं, जिद करने लगे, वो जिद करने लगे भगवान की इच्छा से, उनको तो भोगाना है, जो आ गया उसको जरूर भोगाएंगे, यदि घाव हो गया है तो उसको तीर फाड़ करके उसका निकालेंगे, इसलिए जिद करने से वो मान गए और द्वारका ले गए उनको घुमा करके। द्वारका जा करके और लौटे, इतने में तो उनको ध्यान इत्यादि स्मरण करने का समय नहीं मिला, किंतु अपने स्थान में लौट आ करके अब स्मरण करने की के लिए बैठे। लीलाओं का जैसे अपने आप स्वाभाविक रूप में स्मरण होता था, स्फूर्ति होती थी, अब लाख चेष्टा कर रहे हैं, एक इंच भी, एक केस भी आगे नहीं बढ़ रहा, नहीं आ रहा, सारा दिन रात 1, 2, 4, 10, 20 दिन बैठे रहे किंतु आए ही नहीं। थोड़ा सा ले आया फिर उड़ जाए। जब कुछ दिनों तक नहीं हुआ तो अंत में हार गए। सोचा कि राधा कुंड वाले बाबा जी हमारे मित्र हैं, उनसे मैं जाकर के कुछ कहूंगा और कहने पर वो शायद हमारी कुछ सहायता कर सकते। ऐसा तो बड़े दुखी होकर के माला गोदी ले ली। और जब राधा कुंड में आए तो बड़ी सभा उन लोगों की, संतों की बैठी हुई थी, लोग की हरि कथा चल रही थी। कहा जा रहे वो बाबा जी आ रहा है तो पहले से समझ गए यहां जाने कैसे, और उनके तरफ में पीठ मोड़ करके और उन लोगों से बात की। लोग आ रहे हैं जो आ रहे हैं किंतु किसी की बात नहीं सुना, उनके तरफ में देखा नहीं। यदि राधा जी हमारे प्रति ही असंतुष्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, इनका तो गया अब हमारा भी नहीं गया। इसी तरह से विचार करना चाहिए। गुरु वैष्णव के संबंध में भी भगवत भक्ति के जो अनुकूल हैं उन्हीं से संबंध रखना चाहिए। भगवत भक्ति से जिनका संबंध नहीं रहा ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना, चाहे वो लाख हमारे प्रिय हों। तजिए कोटि बैरी सन, उनको छोड़ करके भगवान का भजन निराला, विशेष करके राधानुदा भजन और भी बड़ा भारी मुश्किल और कठिन है। वो समझ गए और उनसे बातचीत नहीं किया, सामने आने पर भी बातचीत नहीं किया, उनके तरफ में देखा नहीं। इशारे से समझ गए वो भी तो साधारण थे नहीं। अरे जब राधिका जी ने ही त्याग कर दिया तो इन लोगों की तो बात कही, ये तो उनकी सेविका है, ये तो बातचीत करेंगे, इसलिए इनके प्रति द्वेष भाव नहीं आया। बड़े दुखी होकर के लौट गए, अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया। छोटी सी जैसे पुरी में उनका गंभीरा है ऐसा ही कोई थी भजन करने की, उसमें जाकर के बड़े विरह से तड़पने लगे और तब से हार आधे कहते हैं ये अपने शरीर में अपने आप आग लग गई और जल करके फंसू। दूसरे दिन गांव वाले आए, बाबा जी की कोठरी कम नहीं खुल रही, बहुत चेष्टा की नहीं खोली तो अंत में तोड़ दिया। तोड़ करके देखा जैसे वहां पर तो थोड़ा सा राख पड़ा है और बाबा जी को। तब फिर वैष्णव को पता लगा, तब फिर आए और उनका उत्सव इत्यादि किया। तब से प्रतिवर्ष उनका वहां पर उत्सव वैष्णव लोग मनाते। ये तो उनके लिए भगवान ने साथ ही साथ धन दे करके उनको दूसरे जन्म के लिए ठीक कर दिया, किंतु हम लोगों के लिए बिना जाने कहां पड़े हुए हैं, बहुत दूर भक्ति राज्य, ये सब जानते भी नहीं है ये सब चीजें। तो बतलाइए, द्वारका जाना कोई बुरी बात नहीं है, रुक्मिणी जी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करते हैं और सब लोगों की पूजा करते हैं, तो रुक्मिणी जी की पूजा करने में क्या सत्य भ्रमण का क्या है, वो तो बड़े उच्च भाव की थी, वो तो राधिका जी का ही स्वरूप है वो नहीं। इसलिए कहते हैं कि द्वारका में कृष्ण भी जाएंगे और बुलाएं भी अपने प्रिय व्यक्तियों के द्वारा, सत्यभामा जी को भी भेज दें, रुक्मिणी को भी भेज दें, ये जाओ उसको बुला लाओ। जहां राधा जी का दंध नहीं है हम नहीं जाएंगे, कृष्ण बुलाने पर भी। हठात ये चिंता करने के बाद में उन्होंने विचार किया जी मैंने तो कह दिया जी अब द्वारका कभी जाएंगे ही नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति हो भी सकती है जहां पर हमको जाना पड़े तो उसके लिए ये बदला है। गोपो उन्मा गई राधा स्रोत हरिना श्लिष्ट रह गया, फूटम दारा वक्त्या यदि श्रोणी सूत्रे तदा हम तत्रैवाम उद्धत मती पता मृतपुरा समुदीय स्वांताधिपति खगेन्द्रादपि जवाब। कहते हैं कि वैसे तो मैं द्वारकापुर कभी नहीं जाता, राधा जी जाएंगी तब तो जा सकती हैं, राधा जी कभी जाएंगी, राधा जी नहीं जाएंगी। हम भी नहीं जाएंगे। किंतु हाँ एक बात है, राधा जी यदि उन्माद ग्रस्त हो गई, राधा जी को उन्माद हो गया, तो उस समय में तो हृदय में शरीर पर किसी चीज का कंट्रोल नहीं रहता। उन्मादग्रस्त अवस्था में यदि चली गई द्वारका कृष्ण के पास में, और उस समय में यदि श्रवण करूं, यह राधा जी को उन्माद हो गया और उन्माद अवस्था में गुजर गया, तो मैं खगेंद्र, खगेंद्र माने गरुड़, गरुड़ से भी बड़े वेग से द्वारका में अपनी स्वामी जी के यहां पर पहुंच जाऊंगी। उद्धम, उद्धत, उद्धत होकर के, उद्धत माने क्या,
इसकी परवाह नहीं करती,
जैसे वो उद्धत हो गई राधा जी उन्मादग्रस्त होकर के, ऐसे मैं भी उन्मादग्रस्त होकर के राधा जी की सेवा के लिए बिना बुलाए किसी की निमंत्रण की जरूरत नहीं है, अक्टू और किसी को उद्धव इत्यादि को आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहां पर राधा जी का के प्रति ऐसा संबंध। इसको समझने के लिए प्रश्न हो सकता है, जैसा कि भागवत में वर्णन किया गया है और ललित माधव नाटक में वर्णन किया गया है, श्रीमद्भागवत के अनुसार में श्रीमती राधिका जी कुरुक्षेत्र में शुद्ध ग्रहण के लिए गई, शुद्ध ग्रहण के लिए नहीं गई, कृष्ण से मिलने भी नहीं गई, वो गई है तीर्थ यात्रा करने के लिए। क्यों? एक पंथ दुख, सूर्य की पूजा करने से कृष्ण मिल जाते हैं, ऐसे ही हमारे आराध्य देव कौन है, सूर्य, आराध्य माने प्रकाश, वही सूर्य की पूजा करने के लिए जा रही है ना वहां शुद्ध कुंड में, और वो सूर्य की पूजा करने के लिए हम जाएंगे कुरुक्षेत्र में, सूर्य का उपराध था ना, इसलिए उस संबंध से बहुत गहरा संबंध है,
धानी सब धानी सब जल,
इसलिए वहां पर गई, इसलिए गई सूर्य की पूजा करने के लिए, वहां पर सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है, उसमें हमारी जरूर मनोकामना पूर्ण, मैं बहुत दुखी वहां गई, वहां पर गई जिस उद्देश्य से कुछ सफल हुआ, कृष्ण मिले, और वहां पर उन्होंने कहा आने रह जाए मोर मन वृंदावन, आने रह जाए
मन
मन
मोन
मोर मन वृंदावन, मने बने
एक करी मारी
करी मारी, कहा तुम्हार पादोदय कराओ जी उदय सब तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, उन्होंने कहा मैं आ तो गई, आ गई किस लिए, वृंदावन में आपको ले चलने के लिए आई, और लोगों का मन मन है और मेरा मन लगा, तो आप सबके मन में रहते हैं तो कहां रहता हूं, सबके मन में रहता हूं तो हमारे मन में भी रहिए, हमारा मन ही तो वृंदावन है, इसलिए वृंदावन में यदि आप चरणों को यदि चलिए तब तो हमारा सबका होगा, अन्यथा नहीं होगा, जैसे आप सबके मन में उदित होते हैं तो वैसे हमारे निर्मल मन में अतः तो वृंदावन में पधारिए। यहां पर कृष्ण कहा मैं तो यहीं पर मिल तो गया, आपने बेस तो नहीं छोड़ा, आपने अपने बाप को तो छोड़ा नहीं, नंद बाबा को तो पिता बनाया नहीं, यशोदा मैया को अपनी मैया कहा नहीं, हो आप वृंदावन में पधारिए, कृष्ण राजी हुए, उन्होंने अपने मनोरथ पर उनको बैठाया और सब गोपियां उन मनोरथ से खींच करके अपने हाथों से अपने मन से
चोरी गोपीर मनमथे मनमथेर मनमथे नाम धरे मदन मोहन।
और वहां से फिर वृंदावन में आए और गोपियों को कभी नहीं छोड़ा, अंत तक बने रहे। हम लोगों ने देखा नहीं, सब गोपियों के साथ ही प्रकट लीला को अप्रकट लीला में बदल करके नित्य रूप में वृंदावन में ही पधारे रह गए। दूसरी बार सुनते हैं कि कभी कृष्ण जब यहां से द्वारका चले गए, उनके विरह में गोपियां सब तड़पने लगी। राधा जी तो उस विरह को सह न सकी और खेलन वन में गई। खेलन वन माने खेलन तीर्थ अर्थात
बिहार वन शेरगढ़ के पास,
शेरगढ़ के पास में शेरगढ़ ही खेलन वन। वहां पर राधा कृष्ण खेलते थे, वहीं पर परस्पर का बिहार वन है, वहां पर उपस्थित और वहां पर हा कृष्ण कहते हुए जमुना ने और उसके बाद में किसी ने उनको देखा नहीं। इसके बाद में किंतु ये इस कल्प की बात नहीं है, ये दूसरे इस कल्प में कृष्ण द्वारका से आकर के और सब गोपियों को अपने साथ लेकर के गोलोक वृंदावन में गए। ये पहले एक कल्प की बात, तो उसमें ललित माधव वाला वो राधा जी विरह में डूब करके और उसमें कूद गई जमुना में। विशाखा जी यमुना है, विशाखा जी भी उनके साथ हैं और दोनों विशाखा के पिताजी कौन हैं? सूर्य। यमुना जी है ना, वो अपने पिता के घर में चली गई और राधिका जी को अपने साथ में ले गई साथ में वहीं पर, और वहां से नौ वृंदावन में द्वारका में पहुंची। ललित माधव जिसका श्रवण करके रघुनाथ दास गोस्वामी हाय हाय करके रोते 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 उस पुस्तक को छोड़ते नहीं थे। ललित माधव रघुनाथ रूप गोस्वामी ने देखा जैसे ये तो पुस्तक ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक और पुस्तक लिखी दान के लिए कौमुदी और लिख करके उनको दिया। पहले हाथ की पुस्तकें लगती थी और आंसुओं से वो भीज करके वो पुस्तक भी धूल रही थी। ललित माधव भाई इसको दिया था, ये पहले इसको पढ़ लो और हमको उसमें दो चार शब्द लिखने हैं, सुधार कर लिए लौटा दो। बस उनसे मांग लिया और मांग करके छलबाल से ले गई, ये तो विरह में डूबता डूबता मर जाएगा। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी की बड़ी चिंता रही कि ये मर ना जाए तो साधन भजन नहीं होगा, इसलिए वो लोग सब समय इनका देखभाल करते थे। बाघ आ गया उनके घाट से पानी पी रहा है, कहा जा अच्छा कुटी बना दिया अपने आपका, जी हमारी शपथ है तो ये इसमें रहो, सब समय देखभाल। शरीर साधन भजन के लिए एक साधन है, भगवान का दिया हुआ मंदिर है। यदि हम लोग बीजी में छोड़ देना तो फिर भजन साधन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए शरीर को भी साथ साथ में कुछ देखना होगा। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी के समान हो जाएंगे, जब शरीर चिन्मय हो जाएगा तब तक कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं, किंतु जब तक साधन भजन करना है ऐसा संग मिल करके भी, और यदि शरीर चला गया तो फिर साधन भजन नहीं होगा। इसलिए रूप सनातन जी रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़े पुत्र और छोटे भाई और शिष्य की तरह में पालन पोषण करते हुए उनको ये सब शिक्षा देते। तो वो ललित माधव नाटक बहुत ही करुण रस का है, तो उस समय में जब डूब करके चली गई ऊपर तो कृष्ण से नौ वृंदावन में जाकर के मिली थी सत्यभामा के रूप में। इतनी सुंदरी, इतनी मधुर स्वभाव वाली, कुछ बाम्य भाव वाली, मधु स्नेह का कुछ आभार सुनने कि राधिका जी से उनकी तुलना होती थी, इसीलिए उनसे विवाह किया था जो राधिका की स्मृति बनी रहे, नहीं तो विवाह शादी कुछ नहीं करते। तो उस समय में एक दिन रुक्मिणी जी ने इनको देखा, सत्यभामा जी को। सत्यभामा ने वही राधिका जी, और देख करके कुछ इनको बड़ा ऐसा लगा, यदि कृष्ण को ये मिल जाएगी तो कृष्ण हमको आदर नहीं करेंगे, इसलिए वो ना चाहती थी कि कृष्ण से ये मिले, इसलिए उसको बुला करके और बड़े प्यार से उसको रख दिया, ऐसे रखा
छिपा कर,
आबद्ध करके घर, इसको पता ना चले और कृष्ण से मिलने न दे, यदि मिल जाएगी तब फिर कृष्ण हमको भूल जाएंगे, इसलिए उनके अंदर में ऐसी भावना है। कह जो आप प्राकृतिक जगत में भी ऐसी भावना होती है, उसी की छाया जगत की भावना है, वहां पर शुद्ध होता है, यहां पर विकृत विकृत होता है, तो वो मिलना नहीं देना चाहती। किंतु काल में कैसे उस सखियों की सहायता से और उनसे कहीं भेंट हो गई, और कृष्ण मधुमंगल और वहां पर और दूसरे लोगों की सहायता से राधिका जी से उनका कुछ संयोग थोड़ा सा स्थापित, और अंत में जब इन्होंने कठोर शासन किया रुक्मिणी जी ने, दर्शन नहीं करने देंगे तो उन्होंने कहा ये तब तुम अपने प्राणों को छोड़ देंगे, इसलिए समुद्र के किनारे अर्थात यमुना के किनारे नव वृंदावन में उपस्थित हुई और हम डूब करके मर जाएंगे, जा रही हैं, इतने में ऐसे उन्मादग्रस्त हो गई हैं, कृष्ण ने दोनों हाथों से उनको पकड़ लिया, वो समझती हैं ये काला सर्प है, हाथ भी बहुत ठंडा होते हैं, ये काला सर्प ठंडा होता है, तो वो समझ गई जैसे ये काला सर्प है, किंतु आज क्या जाने क्या भगवान हमारा उल्टा है, जो हमें काट क्यों नहीं रहा, अभी काट लेता और मैं डूब जाती मर जाती उनके धीरे, किंतु आज सांप भी आज ऐसे हो गए जो आज काट नहीं रहे। इतने में कृष्ण ने सामने से आकर के उनको दर्शन दिया, इसके बाद में रुक्मिणी भी इसको देख रही थी, वो भी बड़ी उदार हो गई और फिर पीछे से आकर के उनकी शादी। ये दो जो बातें हमने कही इसलिए कही कि राधा जी का कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र गई और कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गमन का भी इसमें उल्लेख अंततः कुछ मिलता है, और इधर कहते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़कर के जाते नहीं, और भागवत इत्यादि में राधा जी का द्वारका जाने का कोई उल्लेख नहीं, इसका सामंजस्य कैसे है, तब तो ये गलत है ठीक है, इसके लिए कहते हैं जैसे कृष्ण के प्रकाश बहुत प्रकार के होते हैं, द्वारका वाले कृष्ण, मथुरा वाले कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, ये अलग अलग हैं, उसी तरह से राधा जी जो कुरुक्षेत्र में गई एक राधा, और जो द्वारका में गई वो एक राधा, और वृंदावन में जो है ब्रज में वो एक, जो कृतिकानंदिनी अथवा विश्वानंदिनी जो राधिका जी हैं वो यथार्थ सब अंशों की अंशिनी राधा जी, वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जा सकती, इसलिए कृष्ण भी कहीं नहीं जाएंगे। उनके दो प्रकाश होते हैं, एक होता है संजोगिनी और एक होता है वियोगिनी। संजोगिनी कहते हैं कामा, कामा को संजोगिनी, काम से मिलने वाली, और वियोगिनी हैं बामा, जो वियोग से। इसमें राधा जी जो कृतिका सुंदरी की लड़की हैं, विश्वान महाराज की लड़की हैं, और वो स्वयं हलादनी शक्ति की मूल हैं, वो कभी भी वृंदावन ब्रज को छोड़ करके नहीं जाए, इसलिए ये कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा, उनको पक्का बात है। किंतु एक स्थिति है वियोग की स्थिति में, अर्थात इस स्थिति में वियोगिनी की स्थिति में यमुना में डूब गई, अब दो करके फिर नौ वृंदावन में गई और वहां केवल कृष्ण मुरलीधर श्याम सुंदर से ही उनको भेंट हुआ। जब उन्होंने हाथ से पकड़ा उस समय में द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में नहीं स्पर्श किया राधा जी का, वो तो श्याम सुंदर के रूप में ही उनको स्फूर्ति हुई। क्यों वहां पर भी भेंट भेंट कुछ नहीं, स्फूर्ति वहां पर होती उस प्रकार से ये स्फूर्ति हुई और श्याम सुंदर बंशीधारी मोर मुकुट के रूप में ही उनको स्पर्श। तो ये है वियोगिनी, ये वियोगिनी राधा जी हैं, कृष्ण से पीछे से द्वारका में मिलती है, किंतु स्वरूप से जो राधा जी हैं कृतिका ये कभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए उनकी जो अपनी किंकरी होगी। किंतु वियोग में यदि ऐसा हो जाए कभी पागल हो जाए, और पागल होने पर कोई भी मति की स्थिरता नहीं रहती, उस समय में ऐसा हो सकता है कि चली भी जाए, उसके लिए कहते हैं कि तब मैं चले जाऊंगा। अर्थात तो राधा से संबंध नहीं होगा उस स्थान को और उस वेश से, उस किसी भी चीज से हमको कोई भी जरूरत नहीं है। राधा जी हमारी स्वामी, राधा जी से ही हमारा संबंध है, इसी के लिए वो कह रहे हैं शक्ति संजोगिनी कामा बामा शक्ति वियोगिनी लागनी कृतिता पुत्री चैव राधा प्राण ब्रजे। ब्रज में राधा तीन प्रकार की हैं, एक संजोगिनी अर्थात कामा, बामा अर्थात वियोगिनी और एक है कृतिता जी की पुत्री। मम प्राणेश्वर कृष्ण तत्व वृंदावनम क्वचित क्वचिन नैव जाति इति जानाति कृति। कृतिका सुंदरी की लड़की जो है श्रीमती राधिका जी जानती हैं कि राधा जी वृंदावन को छोड़कर के कदापि कहीं नहीं जा सकते, उनको दृढ़ विश्वास है, इसलिए वो यहां पर कह रहे हैं यदि कभी उनको उन्मादग्रस्त हो गई। गत उन्माद राधा स्फुरति हरिणा श्लिष्ट हृदय, कहते हैं कि यदि उन्मादवस्था यदि ऐसा कभी संभव नहीं है, किंतु उन्माद में उनकी स्फूर्ति यदि हो, क्या स्फूर्ति? कृष्ण द्वारका है और हमारे बिना रह नहीं सकते, तो उसमें उन्माद अवस्था में उनकी स्फूर्ति होती है सोए सोए कि कृष्ण द्वारका है, हम भी द्वारका हैं और वो मुझे आलिंगन कर रहे हैं, ये बस उनकी स्फूर्ति हो। उस समय में उनकी सेवा के लिए, राधा जी की सेवा के लिए बिना बुलाए तदा हम तत्व उद्धतमति होकर के, पागल होकर के मैं भी पतामी ब्रजपुरा, तो मैं ब्रजपुर से पता गरुड़ की भांति उनसे भी तीव्र गति से द्वारका में मैं समुद्दीय शांता अधिक गति खगेंद्राती जवान, गरुड़ से भी अधिक गति से मैं द्वारकापुरी में पहुंच करके उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत जाऊंगा। इस तरह से ये प्रार्थना अनादि कितना बजा?
6:30
आज यही तक रहे, रात अधिक हो जाएगी, कल से फिर हम लोग इसको आरंभ, हम लोग 9 तारीख को हमारे गुरु जी की व्यास पूजा होगी आविर्भाव तिथि, तो पहले तो यहीं पर करता था किंतु वृंदावन से साधु वैष्णव को आने में कुछ कष्ट होता है, इसलिए उन लोगों का भी ऐसा आग्रह है जैसे आप यहां पर तापका मठ ही है तो पहला दिन वहां पर करें, तो पहला दिन 9 तारीख को हम लोग वहां पर ये गुरु जी का वहीं पर उत्सव मनाएंगे, गुरु तत्व के संबंध में भी बतलाएंगे और ये 9 तारीख को, और फिर 10 तारीख को हम लोग लौट आएंगे, 11 तारीख को हमारे गुरुजी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का यहां पर व्यास पूजा होगी, जिसको अत्यंत अधिक असुविधा हो तो वो तो नहीं जा सकेंगे, नहीं तो बाकी सब लोग आप लोग वृंदावन में बता रहे हैं और वहीं पर खूब सुंदर रूप से उनका ये सब हम लोग पालन करेंगे। वहीं पर सब लोग साथ आएंगे। जिनको परिक्रमा देने की इच्छा होगी वो अपनी परिक्रमा भी दे आएंगे और 11 तारीख को सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। यहाँ पर ही उनका राष्ट्र ज्ञान 3 दिन तक बन छाव कल्प करेंगे।